समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या है उनके पास खास। खेल के मैदान की हलचल भी होगी और आर्थिक जगत पर भी हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि या जयंती है। परिक्रमा के आज के अंक में मैं हूं विनय सक्सेना और मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं सायरा मुश्तवा। सायरा नमस्कार।
नमस्कार विनय, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड उम्मीद है आपकी दिवाली बड़ी धूम से मची होगी एंड मेनी ऑफ यू आर प्रोबब्ली सेलिब्रेटिंग विनय स्पेशली इन द हिल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। मेनी पीपल आर सेलिब्रेटिंग दिवाली टुडे
आज भी कुछ मना रहे हैं।
जी, तो जो लोग आज मना रहे हैं उनको भी हमारी टीम की तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। एंड प्लीज बी वेरी कि आप पटाखे नहीं रोशनी फैलाएं, क्योंकि ये त्योहार सिर्फ रोशनी का ही है।
पटाखे से धुआं फैलता है
आवाज भी होती है और खासतौर से चिड़ियों को, जानवरों को, इंसानों को तो होती ही है प्रदूषण से आपत्ति। सो वेल हैव अ सेफ एंड वेरी जॉयस दिवाली, बट बी कॉशियस नॉट टू स्प्रेड पोल्यूशन एज वेल। एंड वेल इन द नेक्स्ट रफली हाफ एन आवर वील ब्रिंग यू एन अमेलगमेशन ऑफ न्यूज। ऑफ कोर्स वील गो टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि भाई नाम है शो का परिक्रमा, तो जब तक देश की परिक्रमा नहीं करेंगे विनय
तब पता कैसे चलेगा कहां क्या चल रहा है।
एब्सोल्युटली, तो ये सब कुछ होगा, बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेट्स गुजरात लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन अहमदाबाद।
झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों का नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन।
8 स्टेट्स इंक्लूडिंग कर्नाटका एंड छत्तीसगढ़ एंड 2 यूनियन टेरिटरीज सेलिब्रेट देयर स्टेटहुड डे। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ग्रीट द पीपल।
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम सप्ताह में प्रमुख उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने निर्णायक प्रांतों में प्रचार अभियान तेज किया।
इन टेनिस, इंडियाज ऋत्विक चौधरी बोरीपल्ली एंड अर्जुन कढ़े एडवांस टू मेंस डबल सेमीफाइनल्स एट ब्रातिस्लावा ओपन इन स्लोवाकिया।
और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जारी।
And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments that take place at the national or global level. And yesterday, Vinay, we all know that the Prime Minister talked about the One Nation Civil Code. So, aaj hamara Dateline India bhi usi mauzu pe hai. Prime Minister Modi has announced India's movement towards a secular One Nation Civil Code. This follows the success of previous nationwide initiatives like Aadhaar, GST and One Nation, One Ration Card, and aims to standardize laws on marriage, inheritance and divorce across all religions. India is moving towards One Nation Civil Code, that is a secular civil code, said Prime Minister Narendra Modi yesterday while talking on Rashtriya Ekta Divas. Today we are all seeing the success of One Nation Identity, Aadhaar, and the world is also discussing it, said the Prime Minister. We integrated the facilities available to the poor through One Nation, One Ration Card. Under these efforts of ours for unity, we are now working towards the One Nation Civil Code. In fact, the idea of One Nation Civil Code supports social justice, unity and fraternity of the country. Most of the developed nations like United States, UK, France and others have implemented it for their social and economic upliftment.
वर्षों से भारत के धर्म आधारित कानूनों को समान नागरिक संहिता के साथ बदलने की जोरदार मांग की जा रही है, जो धार्मिक संबद्धता की परवाह किए बिना विवाह, विरासत और तलाक जैसे मुद्दों के लिए नियमों का एक सामान्य सेट स्थापित करेगा। सिविल सोसाइटी ने लगातार इस पहल का समर्थन किया है। उनका तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था गैर हिंदू समुदायों को अपने धार्मिक कानूनों का पालन करने की अनुमति देती है। एक समान नागरिक संहिता संभवतः इन प्रथाओं का मानकीकरण करेगी। संभावित रूप से विवाह और तलाक से संबंधित कुछ व्यक्तिगत कानूनों पर प्रतिबंध लगाएगी। एक महत्वपूर्ण कदम में उत्तराखंड सरकार ने इस साल की शुरुआत में अपनी राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित कर दी है। ऐतिहासिक रूप से सरकारें इन धर्माधारित कानूनों में संशोधन करने से बचती रही हैं।
The One Nation Civil Code or the Uniform Civil Code means that all sections of the society, irrespective of their religion, shall be treated equally according to a national civil code, which shall be applicable to all uniformly. They cover areas like marriage, divorce, maintenance, inheritance, adoption, and succession of the property. It is based on the premise that there is no connection between religion and law in modern civilization. Article 44 of the Indian Constitution corresponds with directive principles of state policy, stating that state shall endeavor to provide for its citizens a uniform civil code throughout the territory of India.
समान नागरिक संहिता की बहस भारत में औपनिवेशिक काल से चली आ रही है। इतिहास में हम पाते हैं कि अक्टूबर 1840 की लेक्सी लो की रिपोर्ट और द किंग्स 1859 प्रोक्लेमेशन ने अपराधों, सबूतों और अनुबंध से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता के महत्व और आवश्यकता पर जोर दिया, लेकिन उन्होंने ये भी सिफारिश की कि व्यक्ति को ऐसे संहिताकरण से बाहर रखा जाना चाहिए। उपनिवेशवाद के बाद के युग में संविधान के प्रारूप के दौरान जवाहरलाल नेहरू और डॉ बी आर अम्बेडकर जैसे प्रमुख नेताओं ने समान नागरिक संहिता पर जोर दिया, हालांकि उन्होंने मुख्य रूप से धार्मिक कट्टरपंथियों के विरोध और उस समय जनता के बीच जागरूकता की कमी के कारण समान नागरिक संहिता को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया।
And Vinay, if you remember the Shah Bano case, which was very, very much talked about.
It was a landmarking case.
It was a landmark as well. Why? Because 73-year-old woman called Shah Bano was divorced by her husband using instant triple talaq and was denied maintenance. She approached the courts and the district court and the high court ruled in her favor. This led to her husband appealing to the Supreme Court saying that he had fulfilled his obligations under the Islamic law. And the Supreme Court ruled in her favor in 1985 under the maintenance of wives, children and parents provision, which is section 125 of the All India Criminal Code, which apply to all citizens irrespective of any religion. Further, it also recommended to have a uniform civil code.
Supreme Court ke itihas mein is faisle ke baad desh bhar mein charchayein, baithakein aur andolan hue. Tatkalin sarkar ne dabav mein aakar 1986 mein Muslim mahila अधिनियम पारित किया, जिसने आपराधिक प्रक्रिया की संहिता धारा 125 को मुस्लिम महिलाओं पर लागू नहीं किया। मुस्लिम महिला अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता के अधिकार के साथ साथ अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को संवैधानिक मानते हुए इसे सीआरपीसी की धारा 125 के साथ सुसंगत बनाया और कहा कि इद्दत अवधि को के दौरान पत्नी द्वारा प्राप्त राशि इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो अपना गुजारा कर सके, उसे इद्दत के दौरान और साथ ही उसके भविष्य के लिए भी प्रदान करें। इस प्रकार देश के कानून के तहत एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला जीवन भर या पुनर्विवाह होने तक भरण पोषण के प्रावधान की हकदार है।
And if you also remember, there was another interesting case called the Sarla Mudgal case in 1995. In this case, the question was whether a Hindu husband that was married under the Hindu law by embracing Islam can solemnize a second marriage. The court held that the Hindu marriage solemnized under the Hindu law can only be dissolved on any of the grounds specified under the Hindu Marriage Act of 1955. Conversion to Islam or any other religion and marrying again would not by itself dissolve the Hindu marriage under the act, and thus a second marriage solemnized after converting to other religion would also be an offense under section 494 of the Indian Penal Code.
समान नागरिक संहिता तीखी बहस का केंद्र बिंदु बन गया है। हालांकि यह सच है कि भारत के संविधान का लक्ष्य एक राष्ट्र एक कानून को लागू करना है, जिसमें कहा गया है कि राज्य इसे भारत के पूरे क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के पीछे सबसे महत्वपूर्ण औचित्य यह है कि यह आर्थिक और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा और धार्मिक विभाजन को खत्म करेगा। यह ऐसे सिद्धांत स्थापित कर सकता है जो निष्पक्षता और गैर भेदभाव को प्राथमिकता देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि महिलाएं समाज का वंचित वर्ग न रहें और उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाएं। और सायरा, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है हमारे लिए।
Yes, Vinay, so that segment of our show has come, jo ki humare show ke naam ko puri tarah justify karta hai. We'll go on a parikrama of our country to different regions and see what interesting stories are pouring in by our correspondents. Aur aaj ke parikrama ke safar ki shuruaat hum karenge sarzameen-e-Kashmir se, jisko jannat kaha jata hai. And not just a natural beauty, I think, Vinay, you would be aware that Kashmir is also home to a lot of beautiful crafts.
قالین مشہور ہیں وہاں کے,
وہاں کے قالین مشہور ہیں, وہاں کا فرنیچر مشہور ہے, وہاں کے ڈرائی فروٹس مشہور ہیں, وہاں کے سیب مشہور ہیں. یس, دا ورلڈ کرافٹ کاؤنسل از شیڈیول ٹو ہولڈ اٹس 3-day ورلڈ کرافٹ فورم ان سری نگر آفٹر اٹس فرسٹ لیگ ان نیو دہلی. این ایونٹ آف سچ اے بگ میگنیٹیوڈ کین بی اے میجر پش ٹوورڈز پروموٹنگ لوکل کرافٹس گلوبلی, اینڈ اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیلز ہمارے کورسپونڈنٹ سری نگر سے دے رہے ہیں. لیٹس لسن ٹو ہم.
The World Craft Council has announced to hold a landmark event to commemorate the 60th anniversary in India this year. To begin with, the international body has scheduled World Crafts Forum to be held from November 22 to 24 in New Delhi. This is an event to celebrate India's rich craft and cultural legacy. After this, the celebrations will continue in Srinagar from November 25 to 27, offering opportunities to showcase local artisanship and craft traditions to an international audience. In this connection, the Jammu and Kashmir administration has begun preparations and is optimistic that it will be a landmark event as far as showcasing the art and culture of the UT to the world is concerned. It is being viewed as a major opportunity to give boost to the local crafts at the global level in general and to serve the purpose of promoting Jammu and Kashmir tourism across the world in particular. The concerned line departments, including the handicrafts department, the tourism department and others, have been asked to create necessary awareness among the concerned artisans and the people associated with the trade. As per officials, as many as 50 international artists from different nations and craft backgrounds will participate in the event. The local artisans believe that this could be a wonderful opportunity to foster cross-cultural exchange, empower artisans and create a sustainable development pathways for the sector. For Parikrama, this is Ishfaq Shah from Srinagar.
اور شروتاؤ, آپ کو لے کے چلتے ہیں گوا کی طرف, جہاں دیوالی ایک بڑے ہی الگ ڈھنگ سے منائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ نرکاسر چتردشی کے نام سے وہاں گوا میں منائی جاتی ہے.
Yes, and this year it was celebrated on 31st of October yesterday. And کیونکہ بھائی انڈیا میں بہت ہی الگ الگ ریجنز کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں چیزیں سیلیبریٹ کرنے کے,
تہوار کا نام ایک ہے, منانے کے طریقے الگ.
Yes, in north Diwali is celebrated in a different way, in south in a different way, in Goa in its own peculiar way. So let's hear more from Tushar, our correspondent.
According to the mythological tales, Narkasur was a mighty demon king who ruled over the earth. He was born from the Bhudevi, the goddess of earth, and Vara, a boar form of the Lord Vishnu. Flushed with the power, Narkasur became arrogant and wicked. Lord Krishna helped to free villagers from the demon Narkasur. Lord Krishna killed Narkasur with the help of Satyabhama. The tales further state that after Krishna released all the kidnapped women by Narkasur, they lit a series of oil lamps in the celebration.
The mythological sources say that Satyabhama and Krishna killed Narkasur early one morning right before dawn. In preparation for Narkasura Chaturdashi, paper made effigies of the demon are filled with grass and firecrackers. These effigies are burnt early in the morning by man, and firecrackers are burst, after which people return home to take a scented oil bath. Lamps are lit in a line, after which women perform an aarti for the men.
The Narkasur celebrations are not only cultural tradition but also impart spiritual lessons to the Goans. It reminds them of the importance of fighting against the injustice and oppression and upholding the value of truth and righteousness. It also teaches one to celebrate life with the joy and gratitude and share happiness. Tushar Jadhav for Parikrama, Akashvani Panaji, Goa.
And now we go to the northeast region of our country. In order to overcome water woes, the Tripura Tribal Area Autonomous District Council, or TTAADC, has come up with an innovative method and has adopted a technology which, through suction process, pulls air from the atmosphere and converts it into water. The pilot project, which is currently underway in areas, will continue for a total of 5 years, after which the said air-to-water technology will be installed in hostels and administrative areas under Autonomous District Council. I think it's a very innovative method, Vinay, aur khas taur se jab hum log dekh rahe hain that the water table is reducing drastically because of so many reasons. This will go a long way in probably, you know, filling that gap.
Pahadi ilakon mein khas taur se pani ki kami dur karne mein bahut madad karega.
Bilkul, and jahan pe zahir hai nami zyada rehti, humid areas maybe, there is so much of moisture in the air. If that can be converted into water, to kya kehne. So we have more details on that from our Agartala correspondent.
With an intent to provide clean, pure and abundant water to the students and people residing in remote hamlets, the Tripura Tribal Area Autonomous District Council has appropriated technology to the best possible use to absorb air and convert it into water. The seemingly effective method is proving beneficial, with people and students getting abundant water to consume. Talking to Akashwani News, TTADC member Kamal Koloi said the device that effects suction process to convert air to water has been presently installed in 8 zonal TTADC offices. In addition to this, one unit of the device has been installed at Khampuy Academy at TTADC headquarters at Khumlung, where nearly 3,500 students are enrolled to take education. Naresh Dev Burma, the engineer who oversees the operations of the devices, said that the air-to-water machines are in two categories, one which has a capacity of 150 liters to store pure drinking water. The cost of this machine is over 5 lakh rupees, whereas another machine which has a capacity of 350 liters cost more than 11 lakh rupees. An interesting feature of these machines is that with the help of sensors, the misuse of water is nil, and also when the tank fills up to its capacity, the machine switches off, thereby preventing undue power usage. Nonetheless, cognizant of the fact that there could be power issues if such machines are installed in remote hamlets, the authorities are exploring the option of installing solar-enabled air-to-water machines. Such ingenious method explored by TTADC in diminutive state of Tripura will also inspire other major cities and states with large population to employ the technology for optimal use of resources and to show the way to have a resource against water scarcity. Kunal Shinde for Parikrama from Akashwani News, Agartala.
And now it's time for Azadi Ka Safar.
1st November 1913, the Gadar Party started the weekly revolutionary publication Hindustan Gadar from the Yugantar Ashram in San Francisco, the United States of America. The purpose of the publication was to further the Indian independence movement with special focus on Indian sepoys of the British Indian Army. The weekly was first published in Urdu, followed by a Punjabi edition on 9th November.
Later, the paper was also published in Gujarati, Hindi, Pashto, Bengali, English, German, French and other languages. The issues were first handwritten before being printed using a small hand press. With the British government maintaining an iron grip on the press in India, the weekly emerged as an important publication to counter British propaganda.
The articles in Hindustan Gadar were initially authored by famous revolutionary Hardayal, with the printing operation run by another freedom fighter, Kartar Singh Sarabha, then a student of the University of California at Berkeley.
Copies of the paper were shipped to India with returning Gadarites and immigrants and were quickly deemed to be seditious and banned by the British Indian government. Careful measures were taken to shield the Gadar supporters from the British intelligence, which included the measure of memorizing over 1,000 names of subscribers so that no incriminating evidence could fall into the hands of the British government.
In March 1914, when the US government arrested Hardayal, he fled to Germany, leaving the operations to other members, including Ramchandra, Bhagwan Singh and Maulvi Barkatullah. They continued to spread information related to Indian independence and informed readers about the harshness of the British rule in India.
Other Indians also helped out with the press that printed not just the newspaper, but also compilations of nationalist compositions and pamphlets, including Gadar Ki Goonj, Talwar and other publications, which were also banned from British India.
On November 1st, 1858, India became a direct British colony after the commencement of the Government of India Act. The powers of the East India Company's Court of Directors were transferred to the Secretary of State for India, who was provided with an advisory body consisting of 15 members. A viceroy was appointed to serve as the representative of the British Crown, and Lord Canning became the first viceroy.
The Act ended the controversial doctrine of lapse and the Indian Civil Services were constituted for the administration of the country, with a provision for Indians to be admitted to the service.
Today, on November the 1st, 1954, the Union Territory of Puducherry was liberated from French colonialism.
After India became independent on August 15, 1947, India called for the unification of Pondicherry with the Union. India signed an agreement with France in June 1948, which gave power to the people to determine the political status of the territory.
However, in the municipal elections of Pondicherry, Karaikal and Yanam in October 1948, all municipalities except for one elected representatives of the French India Socialist Party, a pro-French group. The new councillors at a meeting accepted the autonomy offered by the French government.
However, in March 1954, members of the Executive Council, mayors of Pondicherry and seven adjoining communes proclaimed their decision to merge with India without a referendum. All communes in Karaikal also followed suit, after which a referendum was conducted by the French administration in the border village of Kidroor to ascertain the wish of the people.
On 18th October 1954, the municipal councillors and members of the assembly gave their verdict in favour of merger with India. The agreement for the de facto transfer of the four remaining French settlements to India was signed on October the 21st, 1954 and came into effect on November the 1st, 1954.
France and India entered into a treaty establishing the cession by the French Republic to the Indian Union of the French establishments of Pondicherry, Karaikal, Mahé and Yanam.
और श्रोताओं अब चलते हैं खेल के मैदान की ओर और जानते हैं वहां क्या हलचल है।
Yes, in tennis, India's Ritwik Chaudhary Bolipalli and Arjun Gadhia have advanced to the men's double semi-finals at the Bratislava Open that is being held in Slovakia. The Indian duo will take on the pair of Julian Cash of UK and Nicolas Barrientos of Colombia in the semi-finals this evening. Earlier, Bolipalli and Gadhia defeated pair of Robin Haas of Netherlands and Lucas Miedler of Austria in the quarterfinals yesterday. In another quarterfinal, Indian paddler N. Sriram Balaji, along with his Argentine companion Guido Andreozzi, lost to Lukas Pokorny of Slovakia and Michael Vrevensky of Chechnya 2-6-5-7 yesterday.
मुंबई में न्यूजीलैंड के साथ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के आज पहले दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 78 रन बना लिए हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में 235 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने सबसे अधिक 5 विकेट और वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट लिए। आकाशदीप ने एक खिलाड़ी को आउट किया। 3 मैच की श्रृंखला में न्यूजीलैंड 2-0 से आगे है।
And if you take a look at the business world today, the National Stock Exchange, NSE, and Bombay Stock Exchange, BSE, they will conduct their annual Diwali Muhurat trading session today. This special trading session will mark the beginning of the new calendar year, Samvat 2081. According to NSE's notification, the pre-open trading session will commence at 5:45 p.m. and it will end at 6 p.m., while the normal market trading will span between 6 and 7 p.m. Muhurat trading is a live trading session organized by the Indian stock exchanges on the day of Diwali and mostly lasts for about an hour. It is considered an auspicious time to make investments by investors and traders, and during the session, investors and traders often buy stocks and commodities to mark the beginning of a new financial year.
को याद करने का जिनकी आज या तो पुण्यतिथि है या जन्मदिन। श्रोताओं सबसे पहले हम याद करते हैं दामोदर मेनन को। दामोदर मेनन भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। आज के दिन उन्होंने हमारा साथ छोड़ा था। तत्कालीन समय में उनकी गिनती देश के बेहतरीन पत्रकारों में की जाती थी। उन्होंने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। समाजवादी विचारों के होते हुए भी दामोदर मेनन गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे। उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का उनके जीवन पर व्यापक प्रभाव था। 1957 में उन्हें केरल विधानसभा का सदस्य चुना गया। दामोदर मेनन की गिनती उच्च कोटि के पत्रकारों में भी की जाती थी। इनके आर्थिक विचार बड़े ही उदार हुआ करते थे।
Today we are also remembering Bibhuti Bhushan Bandyopadhyay on his death anniversary. A towering figure, especially in Bengali literature, he is best known for works that are, his autobiographical novel, Pathir Panchali, Aparajito, Chandar Pahar and Aranyak. And if we talk about his early life, well, the Bandyopadhyay family originated in the Panithar village near Bashirhat, and Bandyopadhyay's great-grandfather was an Ayurvedic physician who eventually settled in Barakpur village near Banagram, which is now Bangaon. And Bandyopadhyay was born in Murtipur village near Kalyani in Nodia at his maternal uncle's house. His father, Mahananda Bandyopadhyay, was a Sanskrit scholar and storyteller by profession. And we all know Vinay ki kafi sari unki jo works the, especially
unke upanyason par bahut filmein bani hai, Bengali mein bhi aur unka anuvad Hindi mein bhi hua hai.
Ji, Satyajit Ray, in fact, unki jo trilogy bahut famous rahi, Pathir Panchali, Aparajita, Aranyak, they were all penned by Bibhuti Bhushan Bandyopadhyay. We're also remembering S. Ali Raza today, a screenwriter and director who is associated with writing script for hit films such as Aan, Andaz, Mother India, Reshma aur Shera, Raja Jani and Das Nambare. And in 1968, Ali Raza won the Filmfare Award for the Best Dialogue Writer for Saraswati Chandra, which was released in 1968. In 1974, he also directed a film titled Pran Jai Par Vachan Na Jai. And he got married to actress Nimmi. Aur kyunki jab baat hui itni achhi achhi films ki, to Mother India ka bhi ek gana sun liya
jaye.
Duniya mein hum aaye hain to jeena hi padega. Jeevan hai agar zeher to peena hi padega. Duniya mein hum aaye hain to jeena hi padega. Jeevan hai agar zeher to peena.
अब हम बात करेंगे मुरलीकांत पेटकर की, जिनका आज के दिन जन्म हुआ महाराष्ट्र के सांगली जिले में। वे भारतीय पैरा एथलीट रहे हैं। वे पैरा ओलंपिक ही नहीं, ओलंपिक इतिहास में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जिताने वाले एथलीट थे। उन्होंने जर्मनी में आयोजित हुए पैरालंपिक में स्विमिंग के 50 मीटर फ्री स्टाइल में रिकॉर्ड 37.33 सेकंड में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। 2018 में मुरलीकांत पेटकर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बहुत कम लोग जानते हैं सायरा मुरलीकांत पेटकर के बारे में।
राइट विनय, हु इज नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट?
पद्मिनी कोल्हापुरे, फेमस फिल्म एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे का जन्म भी आज ही हुआ, जो मुख्य रूप से हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करती रही हैं। पद्मिनी ने खुद को 80 के दशक की अग्रणी अभिनेत्री के रूप में साबित किया। 4 दशकों से अधिक के कैरियर में उन्होंने 75 से अधिक फिल्मों में काम किया और 3 फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार प्राप्त किए। उन्होंने अपना अभिनय कैरियर 1972 में 7 साल की उम्र में शुरू किया और उनकी शुरुआती कृतियों में जिंदगी 1976, ड्रीम गर्ल 1977 शामिल हैं। उन्हें फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए सफलता मिली, जिसमें उन्होंने युवा रूपा की भूमिका निभाई थी। 15 साल की उम्र में कोल्हापुरे ने बदला लेने वाली फिल्म ड्रामा इंसाफ का तराजू में अपने प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता और 17 साल की उम्र में संगीत में रोमांटिक ड्रामा प्रेम रोग के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म पुरस्कार दिया गया।
जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा।
Another beautiful actress has a birthday today. We are talking about Aishwarya Rai, who is now Aishwarya Rai Bachchan. And she doesn't need any introduction as such. Of course, she won the Miss World 1994 pageant and later established herself as one of the leading actresses in Indian cinema. She has received numerous accolades for her acting, including 2 Filmfare Awards. And without much ado, let's listen to one of her songs from the film.
Nimura, Nimura, Nimura! Nimura, 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 Nimura,
सजना तेरे बिना बेसुआदी रहतिया ओ सजना हो रुखी रे वो रुखी रे कांटू रे काटे कटे ना तेरे बिना बेसुआदी रहतिया ओ सजना तेरे बिना बेसुआदी
और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। मुझे विनय सक्सेना और मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की अनुमति दीजिए। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर। साथ ही आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी हमारे कार्यक्रम को 24 घंटे सुन सकते हैं। नमस्कार
नमस्कार।